یہ تین گاتھائیں کل اپن نے پڑھی تھی, گاتھا کا سامان ارتھ ہوا تھا. اصلی بات یہ ہے وہ جہاں بھول ہوتی ہے ذرا اسے پکڑ لیتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ شبھ بھاو اور شبھ کریا یہ مکتی کا مارگ نہیں ہے, سمیہ درشن گیان چارتر مکتی کا مارگ ہے. سمیہ درشن گیان چارتر مکتی کا مارگ ہے یہ تو بہت پرسدھ ہے, تتوا سوتر کے پہلی سوتر سے یہ بات ہے. یہ کوئی نئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی آدھیاتمک پرش نے ہی بتایا ہو. لیکن گڑبڑ کیا ہوتی ہے, سب ودوان سب لوگ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ شبھ کریا اور شبھ بھاو موکش مارگ نہیں ہے, کیونکہ وہ جڑ کی کریا ہے پر کی کریا ہے اور سمیہ درشن گیان چارتر مارگ ہے. پر وہ سمیہ درشن گیان چارتر کے نام پر پھر اسی شبھی بھاو اور شبھ کریا کو ہی استھاپت کر دیتے ہیں. سمجھے نا, پر آپ لوگوں کے خیال میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ ویسے سدھانتتا تو کہہ دیتے ہیں کیا کہ شبھ بھاو اور شبھ کریا دھرم نہیں ہے, شدھ کریا روپ شدھ بھاو روپ سمیہ درشن گیان چارتر یہ مکتی کا مارگ ہے. لیکن پھر ہم سمیہ درشن گیان چارتر اپنانا چاہیے کہ ہم وہ اپناؤ اور شبھ کریا اور شبھ بھاو چھوڑو. پھر وہ ان سمیہ درشن گیان چارتر کے نام پر شبھ کریا اور شبھ بھاو ہی کرنے لگتا ہے اور اس کا ہی پرتیپادن کرنے لگتا ہے, اس کو ہی ماننے لگتا ہے. بس وہ چھڑا کی جو تین پنکتیاں ہیں وہ تو ایک طرف رکھی رہ جاتی ہیں اور پھر وہ آٹھ گن اور پچیس دوسوں سے رہے اور پھر پچیس دوست گنانے لگ گئے, آٹھ گن گنانے لگ گئے اور پھر اسے اس طرح کے شبھ بھاو, پھر پانچواں گنستان انوید سب مہاوید, پھر وہ ساری کریائیں یہاں تک کہ جو گپتی روپ کریا ہے, گپتی روپ ہے دھرم, اس میں بھی کوئی کریا کو ہی لے لیتے ہیں. مطلب بالکل من وچن کا ایسے بھی الگ ہٹ کے اندر میں ہے نا, ماں جم پئی ماں چنتئی اور ماں چتھئی ہے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ من کو روکنا وچن کو روکنا, پھر اجن کی کریا کو پہلے کرنے روپ اور پھر روکنے روپ اور کریا کو ہی کہہ دیتے ہیں. ایسے پہلے یہ چنتن کرنا چاہیے, پھر یہ چندن ان کو نہیں کرنا چاہیے, ایسے چندن کو کہہ دیتے ہیں. اور وہ دھرم وہاں ان کو پتہ لگتا ہی نہیں ہے اور اس اگیان کی سرکھا کے لیے جو جنوانی میں بہت ویوہار کا کتھن ہے وہ ان کے لیے سرکھا کا کام کرتا ہے. کیا سب ہم تو آگم کے آدھار پہ, ہم تو آگم کے آدھار پہ چلتے ہیں. ابھی میں پانچ سات دن پرانی بات ہی کہتا ہوں, دو جگہ میں گیا تھا میرٹھ اور دلی, تو جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں سے بات ہوئی بس ہم تو آگم کو پکڑ کے چلتے, آگم میں بتا دو آگم بتا, جیسے ایسے ایسا بولتے ہیں جیسے سامنے والا آگم کا بالکل برود مانتے ہی نہیں ہو اور آگم کی برودھی باتیں کرتا ہو اور اپنے افسر اپنی طرف سے ہی کہتا ہو. ہم تو سب سوامی جی کی بات, ہم تو سوامی جی کی بات کرتے ہیں, تو جیسے سامنے والے کو پہلے تمہیں کہتا ہوں تم سوامی جی کی بات نہیں کہتے, اس سے کیا مطلب؟ آگم کی کہتے ہو نا تو اب کرو نا آگم, آگم بتاؤ آگم کی بتاؤ. اب وہ ویوہار کے کتھن بہت ہیں نا تو ان کو لالا کر کے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں, وہ تو گلی گلی میں مل جاتے ہیں, ہر کتاب میں ہر کہیں بھی مل جاتے ہیں, بڑی سے بڑی کتاب میں اور چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں بھی مل جاتے ہیں. اور نشچے کے کتھن کو اتنت سنکھیپ میں ہوتے ہیں, جیسے دیکھ لیجیے کہ تیسری ڈھال میں تین پنکتیاں نشچے کی اور باقی سب ویوہاری ویوہار کی تو ہیں. دو سب اور لکھ دیے ان نے اور باقی رہی کسر ان نے پوری کر دی. ہیتو نیت کو ہوئی اور کارن سو ویوہار ہو, دیکھو کارن کہاں ہے ویوہار کو اور نیت نشچے کا ہیتو کہا ہے نا. کارن اور خاص کر ہیتو دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک کارک ہیتو और एक व्यापक हो जाए हेतु। सुने कभी वो है ना खानिया तत्व चर्चा, उसमें फूलचंद जी साहब ने बहुत विस्तार से इस बात को खोला है। ये शब्द सुने कि नहीं सुने, कारक हेतु और ज्ञापक होती। तो ज्ञापक हेतु उन्हें बोलते हैं कि जो उस बात का ज्ञान कराने में हेतु है, जैसे धुआं पर्वत के ऊपर धुआं है तो वो धुआं है कार्य और अग्नि है कारण, अग्नि में से धुआं पैदा हुआ ना। अब जब अग्नि का हमें ज्ञान हुआ तो इस ज्ञान रूपी कार्य का धुआं का ज्ञान है कारण और अग्नि का ज्ञान है कार्य, मामला पलट गया। महिलाओं की समझ में नहीं आया होगा, मैं इसलिए नहीं मान सकता हूं कि टॉप तो यूनिवर्सिटियों में वो ही कर रही हैं आजकल। फिर कहता हूं जरा थोड़ी सी राई की ओट में पहाड़ है। जब कारक हेतु की बात चलेगी तो ये कहेंगे अग्नि है कारण और धुआं है कार्य, और जब ज्ञापक हेतु की बात चलेगी तो कहेंगे धुआं का ज्ञान। अगला धुआं कह देते हैं, ये दिक्कतें हैं कि धुआं है कारण और अग्नि है कार्य, वास्तव में धुएं का ज्ञान है कारण और अग्नि का ज्ञान है कार्य। अब हमें ज्ञान करना है कि पर्वत पे अग्नि है कि नहीं है, इसका ज्ञान करना है। तो ये कार्य हुआ तो धुआं दिख गया, तो धुएं का ज्ञान कि जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, और हमने अग्नि का अनुमान कर लिया। तो ये ज्ञापक हेतु होते हैं, तो व्यवहार निश्चय का ज्ञापक हेतु है, कारण हेतु नहीं है। ज्ञापक हेतु है माने क्या, कि बाहर की यदि नग्न दिगंबर दशा है तो अंदर में छठवां सातवां गुणस्थान होगा, इस बात को वो बताता है। क्या यदि कदाचित ना भी बता, घबराना नहीं, पूरी बात सुनना, तो यदि नग्न दिगंबर दशा ना हो तो अंदर में तीन कसाई के अभाव रूप निश्चय चारित्र नहीं है, इसको तो पक्का बताता है ना। तो उनमें कार्य कारण तो ज्ञापकता के लिए माना है, और हम कारकता के लिए मान लेते हैं, एक देव का दूसरा देव को कर्ता मान लेते हैं, एक देव दूसरे देव को कारण मान लेते हैं। और न्याय शास्त्र में तो ज्ञापक हेतु के ऐसा ही सारे काम होते हैं, वहां कारक की क्या बात है, ईश्वर करता है कि नहीं इस पर भी विचार करेंगे तो ज्ञापक हेतुओं से करेंगे सब। कि ये जगत इतना विचित्र है, इससे मालूम पड़ता है कि उसका बनाने वाला भी बहुत विचित्र होशियार होगा, है ना। इससे क्या मालूम पड़ता है, मालूम पड़ता माने ज्ञान होता है, ज्ञान होता माने कि हमें ज्ञान का निर्णय करना है, अभी कर्ता का निर्णय कहां हो रहा है। तो बहुत जगह ज्ञापक हेतुओं को कारक मान लिया, और हमने व्यवहार निश्चय का कारण है ऐसा मानते हैं, लेकिन हेतु नियत का हो ही का तो बता दिया मैंने। अब एक कारण सो व्यवहारों, अब ये जैसा निश्चय रत्नत्र जिसके अंदर होगा, और जितनी मात्रा में, मात्रा माने अनंतानंद जी की गई है, अकेली के प्रत्याख्यान भी गई है, प्रत्याख्यान गई है वो मात्रा, उसके अनुसार बाहर व्यवहार होगा, ख्याल नहीं ना। तो उसके अनुसार होगा, उससे नहीं होगा। तो बाहर के हम अंदर तो देख नहीं सकते तुम्हारे आत्मा में कि तुमने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन किया है कि नहीं किया है, क्या है? लेकिन बाहर में आपका जो व्यवहार है उसे देख के हम निर्णय करते हैं, तो वो भी वहां भी वही है, उसी अर्थ में है। और हम उसे जहां हम क्या समझते हैं कि भैया देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम तो उपवास शुरू कर दो, हम उपवास का स्वरूप नहीं समझते हैं, होता नहीं है पक्का, क्योंकि हमने तो सुना था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, कसाय विषय हारो त्यागो यत्र विधीते यज्ञ स उपवासा शेषम लंघन कम विदु। आहार का त्याग, कसाय का त्याग, पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग, इसका नाम उपवास है और बाकी तो लंघन है। तो भगत अब हम तो और समझ में कुछ आता नहीं, कसाय विषय तो क्या होती है, कसाय का त्याग तो हमारी समझ में आता नहीं है। गुस्सा नहीं करें तो तुम लोग छेड़ा नहीं करे तो हम नहीं किया करेंगे, और गुस्सा आ जाता है तो ऐसा वो नहीं समझता है कि आज मेरा उपवास भंग हो गया। यदि एक और मुंह में चला जाए तो निश्चित रूप से उसे पक्का भरोसा होता है कि आज मेरा उपवास भंग हो गया, होता ना। लेकिन गुस्सा आ जाए तो उसे ऐसा लगता है, पर एयर कंडीशन के बिना अच्छा नहीं लगता है, बाहर बैठे बैठे बहुत गर्मी लगती है, तो इसमें मेरा उपवास भंग हो गया ऐसा लगता है। वो इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय का विषय सेवन है ना, स्पर्शन इंद्रिय का विषय सेवन अकेला कोई क्रिया विशेष नहीं है। मैंने वो धर्म के ब्रह्मचर्य में लिखा कि नहीं लिखा, आठों प्रकार का जो स्पर्श है उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन, वो ब्रह्मचर्य का भंग है। तो इस दृष्टि से यहां ये बता रहे हैं कि बजे सिद्धांतता तो सब स्वीकार कर लेते हैं, और फिर बाहर जब व्यवहार की बात आती है तो शास्त्र में व्यवहार से बहुत वर्णन है। अप्रत परत बनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। अब देखो रुचि तो हम कहते मुझे तो साहब खाने पीने की रुचि है, मुझे तो पढ़ने लिखने की रुचि है। अब ये रुचि नहीं है क्या, तो फिर श्रद्धा, श्रद्धा के अर्थ में है ना, क्योंकि समझने का वर्णन चल रहा है ना, तो श्रद्धांत, श्रद्धा माने भरोसा। हमने तो अपने पिताजी की बड़ी पक्की श्रद्धा है। अरे पिताजी की श्रद्धा की बात नहीं है कि देवसास गुरु की श्रद्धा की बात है, अरे देवसास गुरु की भी नहीं है, आत्मा की श्रद्धा की बात है। आत्मा का भरोसा, क्या भरोसा आत्मा का, मालूम उसका क्या रूप है, ये मैं हूं ऐसा भरोसा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और कोई भरोसा भरोसे की नहीं है कि दे दो मुझे समय पर पैसा देगा ही, सेवा करेगा ही, जनता की बात नहीं, ऐसा नहीं है, इसका नाम कुछ है ही नहीं। इधर माँ बाप के प्रति श्रद्धा थोड़ी कम हो तो होगा सम्यक दर्शन। क्या बोल रहे आप, कम कम हो, थोड़ी कम हो कि पूरी कम हो, बोल पीयूष। तब सब घबरा रहे होंगे। अभी बोला है मैंने एक सेकंड पहले, यदि श्रद्धा का नाम अपनापन है, अब समझाए ना, तो माँ बाप के प्रति अपनापन होना कि यही मैं हूं, ये मिथ्या दर्शन है कि नहीं है, तो माँ बाप की श्रद्धा मिथ्या दर्शन है कि नहीं है, बोलो। ट्रोनोमोलॉजी ने तो रास्ता निकाला है, माँ बाप की श्रद्धा माँ बाप के रूप में होना कोई मिथ्या दर्शन नहीं है, निकाला कि नहीं निकाला। लेकिन श्रद्धा माने माँ बाप के रूप में होना, ये श्रद्धा का काम ही नहीं है, ये तो ज्ञान का काम है। अर्थात उसका तो एक ही काम है, कौन सा काम बोल, संतोष है, अपनापन स्थापित करना, बस अपनापन, किसी में भी ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, इससे ज्यादा श्रद्धा कुछ नहीं जानती। ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं ये भी नास्ति का कथन है, इसकी भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ये मैं हूं, बस इतना ही पर्याप्त है कि और कुछ मैं नहीं हूं, वो तो नास्ति की बात हो गई ना, तो वो श्रद्धा वहां जाती ही नहीं है, पर की तरफ श्रद्धा देखती ही नहीं है, और ज्ञान पर को देखे बिना रहता ही नहीं है। ये जो गाथाएं है ना, अभी इसमें आया है, आने वाला है, ये 160वीं गाथा निकालो पहले, जरा जो बात आ गई सामने वो बताता हूं, घबराना नहीं, छोड़ी नहीं है वे गाथाएं मैंने, ये बहुत सरल है, उनका भी अर्थ करूंगा। सो सब्यनान दर्शी कम्यरयेन बिनेमाव छन्नो संसार समावन्यो
नद जा नदी शब्द दो शब्दम
सर्वता का क्या अर्थ है? आराध्य बोलो, ठीक है ना? सर्वता हिंदी में क्या? सर्वता माने सर्वथा, ता है था नहीं है, सर्वता माने चारों ओर से, फोर एंड वाइड। क्या कह रहे हैं माने इसमें कि आत्मा तो सर्वदर्शी स्वभाव वाला है, सर्वज्ञानी स्वभाव वाला है, मतलब सबको देखना जानना उसका स्वभाव है। पर कर्म मल आसन्न, जो कर्म रूपी मैल से आसन्न हो जाने के कारण संसार दशा को प्राप्त होता है, और क्या गड़बड़ हो जाती है। मैंने इसके लिए मैं गाथा सुना रहा हूं कि सब पदार्थों को चारों ओर से नहीं जानना, ये गड़बड़ हो गई। तुम तो कहते पर को जानना गड़बड़ है। अब है जी, क्यों क्यों दिखाई मैंने कहा था, इसलिए दिखाई, समझने के नहीं। वो कहते सबको सब ओर से, सर्वांग से, ऐसा नहीं कि आंख से देखे और कान से सुने, ऐसा नहीं, सबको चारों ओर से देखना जानना इसका ये स्वभाव था। तो हमेशा ही जानना देखना चाहिए, यही स्वभाव में रहना है, लेकिन कर्म से आसन्न होने पर वो ऐसा स्वभाव में नहीं रहता है, ये उसकी गड़बड़ है। माने सबको सब ओर से नहीं जानता है, इसका नाम संसार है। कर्म बल से आसन्न होकर संसार को प्राप्त हुआ, सबको सब ओर से नहीं जानता। क्या कह रहा है? एक दफे पेन लेके बैठ जाओ और आदि से अंत तक समय सार पढ़ो, और किसी का भी, मतलब मेरी टीका की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी की, यदि तुम आत्मख्याति का सीधा अर्थ समझ सकते हो तो आत्मख्याति ही पढ़ो, जयसेन की पढ़ो। और मैं पूछता हूं कि जो गुरुदेव के विरोधी हैं उनकी टीका को भी लेके पढ़ो, मैं उनका किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसमें भी ये लिखा मिलेगा। अब जब आंख में पट्टी चढ़ जाती है तो इतना सब नहीं दिखता है, पर एकाध जगह कहीं क्योंकि अपेक्षा से बताई होगी निश्चय लेके कथन पर, और व्यवहार से आदमी ऊपर नहीं उठता है, इसलिए जरा उसको जोड़ दें कि ये बताया होगा, तो उसको लेके झंडा लेके घूमता रहता है, और उसके बहाने और उस इतने अज्ञान को सुरक्षित रखता है। अभी तो अपनी बात चल रही है। देखो तो कल अपने कहा था इन गाथाओं में तीन उदाहरण दिए, तीन माने एक ही उदाहरण तीन बार रिपीट किया। क्या है वो उदाहरण? कि ज्यो श्वेतपन हो नष्ट पटका मेल के संयोग से। उदाहरण को अच्छी तरह समझ लेना, कहते मेल के संयोग से कपड़ा मेला हो जाता है, नहीं लिखा, कपड़े का जो सफेदीपन है, सफेदीपन स्वभाव है, वह नष्ट हो जाता है। मैल के संयोग से क्या नुकसान हुआ कपड़े का? कि उसका जो श्वेतपन सफेदीपन का स्वभाव है वो नष्ट हो गया। उसी प्रकार मिथ्यात्व मल के लेप से जो भगवान आत्मा का सम्यक्त स्वभाव है वो नष्ट हो जाता है। सम्यक्त स्वभाव माने अपने में अपनापन मानने रूप स्वभाव, अपने में अपनापन मानने रूप स्वभाव है, एक सदृशा में अनंत काल तक यही स्वभाव रहता है। ये ऐसी बहुत बातें आती हैं। अभी भी एक बात कह देता हूं कि जब ध्यान का प्रकरण आएगा कि कौन से गुणस्थान में कौन सा ध्यान होता है, तो कह देंगे कि बस 14 गुणस्थान तक गिना देंगे और कह देंगे सिद्धों में ध्यान होता ही नहीं, और सिर्फ गुणस्थानों में ही बताएंगे। आप समझे ना? अब कहते हैं अरे भाई जो ध्यान सिद्धों में नहीं होता है तो यहाँ पहले काय को होता है, उस सिद्धों में अनंत काल तक ध्यान अवस्था में रहना है, इसके लिए तो ये अभी पहले हुआ है। और अंतर्मूर्त की शर्त इसलिए है, जो एक दफे अंतर्मूर्त तक आत्मा में लीन रह गया वो फिर अनंत काल तक रहता है, वो इतना पक्का जोड़ लग जाता है। कच्चा जोड़ तो टूट जाता है ना, ये बनने सामने लगी ना, ऊपर ये लकड़ियां लग रही ना, ऊपर सीमेंट का वो छत डाली है, तो लकड़ियां काय को लगाई है कि एक दबे 20 दिन में पानी डालते रहो और ये सेट हो जाएगी तो फिर वो अटूट हो जाएगी। और अबे वही सीमेंट वही लोहा, यदि ये पल्लियां हटा दो और कोई बच्चा भी ऊपर चला जाए तो उन्हें डर लगता है छत गिर जाएगी। तो अंतर मुहूर्त तक आत्मा में ध्यान जुड़ता है तो वो अटूट हो जाता है। तो ऐसा क्यों लिखा, तुमने गुणस्थान से पूछा था, तो गुणस्थान ही नहीं है, वो भी नहीं कह दी हमने बस, और ये कैसी स्टाइल है, तो सम्मत आसन भी नहीं रहना चाहिए मोक्ष में। कौन से गुणस्थान में कौन सा सम्मत आसन होता है, क्यों यदि गिनाएंगे तो क्या बोलेंगे, चौथे से ग्यारहवें तक उपशम सम्यक है, और चौथे से बारहवें तक छह उपशम सम्यक, और तेरहवें में और चौदहवें में छाए सम्यक, और कौन क्या खत्म, हम मोक्ष में चले गए सब खत्म। क्यों जी सम्यक रहेगा ना, कौन सा रहेगा छायक रहेगा, अरे छायक भी तो कर्म के छह की अपेक्षा है, अब वो छह कभी हो कभी का हो गया, अभी तुम तो उसे छायक कहते रहो नहीं बता, पर सम्यक तो रहेगा। असने छायक मायक नाम, ये छायक मायक नाम तो अपने नीचे से दिए थे, छह होने की अपेक्षा से दिए थे, क्यों एक दफे किसी माँ बहन के बच्चा हो गया तो वो क्या अनंत काल तक बच्चा होता ही रहेगा, हो गया खत्म बात, और उसका व्यवहार भी बच्चे का जब तक वो जिंदा है इस पर्याय में तब तक रहेगा, और बाद में वो भी खत्म हो जाएगा, अगले भव में वो उसका बच्चा भी नहीं कहलाएगा, तो इस भव तक कहलाएगा, क्यों होना थोड़ी है। मैंने वो सम्मत दर्शन हमने गुणस्थानों तक ही उसकी हम गिनती करते हैं, जब गिनाते हैं ना इसलिए वो आगे नहीं बताया जाता है, लेकिन जो स्वभाव है वो एक दफा प्रकट हो गया वो तो अनंत काल तक रहेगा, नहीं तो वो स्वभाव कैसा है ना। जो श्वेतपन हो नष्ट पटका मैल के संयोग से, सम्यक भी त्यों नष्ट हो मिथ्यात्व मल के लेप से। देखो ये अभी अपना कितने 7-8 दिन रह गए, कितने दिन रह गए, ये गाथाएं सबको याद हो जानी चाहिए, हो ही जाएंगी, मैं अभी बता देता हूं तो आपको याद रहे और हो जाएंगे, और नहीं ध्यान रखोगे तो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि रोज ही ना ये पढ़ेंगे यहां, और आप अपनी किताब में देख करके सुनेंगे और बोलेंगे, तो कम से कम 10 दफा तो रिपीट दे ही हो जाएंगी, फिर एक एक दफे 3-3 दफे मैं पढ़ूंगा, फिर मैं रिपीट करूंगा, फिर अर्थ बताऊंगा, तो 8-10 दफे 15 दफे रिपीट हो गई तो याद हो जाती है, और याद होने में कोई दम ही नहीं है ना, ये पंक्ति तो 3 दफे दोहराई जानी है, कौन जो शीत पन हो नाश पट का सम्यक भी मतलब मिथ्यात्व मल के लेप से आत्मा नष्ट नहीं होता क्या, सम्यक तो नष्ट होता है। अब उदाहरण में ये सम्यक किसके स्थान पर है, देख रहे हो तो हमें तुमने लिख दिया प्रतिस्थानी फलाने स्थानी लिख दिया ना, बोलो ये जो सम्यक तो है ये किस शब्द के स्थान पर है, मतलब वस्त्र के स्थान पर है ना, ये वस्त्र जो मेला है तो वो मेल के संयोग से मेला हो गया वस्त्र, और अब जब वो नाश करेंगे मेल का तो वस्त्र नष्ट हो जाएगा, क्या नष्ट होगा, मेल के संयोग से जो श्वेतपन नष्ट हुआ है वो नष्ट हुआ श्वेतपन अनष्ट हो जाएगा। नहीं ऐसा मेरी भाषा क्यों बोल रहा हूँ ऐसी, हम आपको अभी अभी समझाता हूँ। सफेद का विलोम होते हैं ना शब्द, विलोम शब्द समझ गया ना, आते ना बच्चों के लिए ना विलोम शब्द लिखो, तो सफेद का विलोम क्या है सोच सोच मन में सोचना, श्वेत का विलोम क्या है तो एकदम सारे लोग कहें काला, तो काले का विलोम क्या है या सफेद, ये सही है। अरे सफेदपन नष्ट होकर वो कपड़ा हो जाएगा ऐसा थोड़ी है, तो क्या हो जाएगा, लाल भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, मटमैला भी हो सकता है, तो श्वेत का उल्टा अश्वेत ही हो सकता है, काला वाला नहीं हो सकता। मीठे का उल्टा क्या क्या हो सकता है, खारा अमीठा ही हो सकता है। समझ गए ना, सम्यक्त का उल्टा असम्यक्त ही हो सकता है, उसको मिथ्यात्व तो कहते हैं, मिथ्यात्व तो का उल्टा अमिथ्यात्व तो ही हो सकता है, वो सम्यक्त भी उसी का नाम है ना। तो यहां पर सम्यक दर्शन को सफेदी की जगह रखा है, वस्त्र की जगह नहीं रखा है, वस्त्र की जगह क्या है, आत्मा वस्त्र की जगह है, हैं? और मिथ्यात्व मल मिथ्यात्व किसकी जगह है, मैल की जगह है ना। अब बस तीनों लगा लो, अभी सम्यक दर्शन पर लगाया तो ये हो गया, सम्यक ज्ञान पर लगाया तो वे कहेंगे अज्ञान मल के लेप से, यहां मिथ्यात्व मल के लेप से थे तो वहां अज्ञान मल के लेप से, फिर चारित्र पर लगाएंगे तो वहां लगा देंगे कषाय मल के लेप से, क्योंकि कषाय का नाम अचारित्र है, कषाय का विरुद्ध, कषाय को अचारित्र कहते हैं तो कषाय गई तो अकषाय भाव को चारित्र कहते हैं। अब अकषाय भाव को चारित्र कहते हैं पक्की हो गई बात, अब उपवास को कह देगा फिर चारित्र, तो उसमें कषाय छोड़ी हो तो, लेकिन भोजन छोड़ने को मान लेगा मुख्य रूप से, और कषाय छोड़ने को तो मानता ही नहीं है, क्योंकि कषाय आ जाने से वो उपवास भंग नहीं मानता, पांच जी का विषय आ जाने से वो उपवास भंग नहीं मानता क्यों, और वो भोजन मुंह में चला जाए तो उपवास भंग मानता, क्यों जी ठंडी हवा लगे तो उपवास भंग नहीं हुआ, और एक एक दाना मुंह में चला जाए तो उपवास भंग हो गया, ऐसा है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं नहीं ऐसा ही है, घबराना नहीं, क्यों वो ठंडी हवा हमारे हाथ में नहीं है, वो चलती है हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन ये दाना पेट में जाने को हम रोक सकते हैं, तो जब हमारा दाना गया है तो बुद्धिपूर्वक गया है, और हवा लगी है तो अबुद्धिपूर्वक लगी है, लेकिन उसमें हवा में हमारी इष्ट बुद्धि आए तो गए काम से। मुंजराज जंगल में बैठे अब एक मौसम में वही हवा ने काटती है और दूसरे मौसम में वो वही अच्छी लगती है, तो सब दिन आते होंगे ना उनको, सभी दिन आते होंगे ना, लेकिन जब वो अनुकूल लगती है तब उसमें अब अच्छा मजा आ गया, अच्छा रहा और हो गया काम खत्म, तो उपवास भंग हो गया, और हवा लगती रहे तो कोई उपवास भंग नहीं हुआ। इधर मैंने समझ से निकल गया था तो लोग अटपट अर्थ करते थे कि तुम समझ लो उसका क्या क्यों, एक कितना बढ़िया कुंडलाकार पर्वत है, चारों तरफ जैसे कुटीर माँ बहन ने कुंडल पहन रखा हो, कुंडलपुर है ना, तो कुंडलाकार पर्वत है, इतनी हरियाली, इतना अच्छा, ऐसा लगता है कि मैं तो सारी जिंदगी अपनी यहीं बिता दूं, क्यों कितनी बढ़िया बात है ताराचंद जी, लेकिन परिग्रह महाविद खंडन खंडित हो गया भाई साहब, अब तुम्हारी कोई मजबूरी है कि तुम सारी जिंदगी यहां बिता देना चाहते हो तो बिता दो ना, कौन रोक रहा है, जाना भी मजबूरी है, अरे ऐसा नहीं है, अरे भाई उसमें एकत्व आ गया, ममत्व आ गया, फिर रह क्या गया, क्यों पर्वत तो नहीं आया, हमारे गवर्नमेंट तुम्हारे नाम करेगा तब होगी, तब तुम्हारे नाम होगा, माने तुम किसी भी जगह पर मुग्ध हो गए। अब एक क्या है, कोई किसी लड़की पे मुग्ध हो जाता है, कोई किसी जगह पे मुग्ध हो जाता है, कोई पैसे पे मुग्ध हो जाता है, कोई ताजमहल जैसी बिल्डिंग पे मुग्ध हो जाता है। क्यों? अब हमें सारा बिहार करते रहना है तो कुंडलपुर भी आएगा और अकुंडलपुर भी आएगा, मतलब अच्छे से अच्छी जगह आएगी और खराब से खराब जगह भी आएगी, और उसमें ना इष्टानिष्ट बुद्धि नहीं हो, अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन तो कदाचित हो सकता है, वही चारित्र के दोष गुण के आधार पर, वो भी चारित्र की कमी है, चारित्र की शुद्धि की कमी है, वो भी कोई बहुत निर्मल अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो आए तो चले, लेकिन वो ये उसमें अपनत्व आ गया है। ऐसी एक बात और आई थी कि ये जितने जैन धर्मशालाएं हैं ये सब क्या बोलते हैं उनको, इनका नाम रख देना चाहिए, नया नाम आया है मैं भूल रहा हूं अभी अभी, मुनि संघ व्यवस्था समिति बनाती हो क्या नाम रखते हो उसे, संत निवास, संत निवास होना चाहिए, और कोई शादी विवाह इसमें नहीं होगा, भट्टारा की नशिया में कोई शादी विवाह नहीं होगा, बस संत निवास होगी। ये तो ये परिग्रह हुआ कि नहीं हुआ ताराचंद जी बोलो, फिर तो ऐसा हो गया कि हमें तो एक गांव में दो कमरे चाहिए और तुम्हें तो गांव गांव में 100 कमरे चाहिए। अब संत का निवास कहीं होता ही नहीं है, अब वो संत ही संत के लिए रिजर्व हो गया और दूसरे के लिए रिजर्व हो गया है तो उसे कैंसिल कर दो, और संत के लिए रिजर्व हो गया है तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। ये बात आप आती है ना सामने, फिर बोले ये परिग्रह नहीं है, फिर देखो साहब जी दूसरे की आलोचना करे, अरे भाई हम सिर्फ परिग्रह कैसा होता है उसका स्वरूप समझा रहे, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, किसी की भलाई बड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन कोई ऐसा थोड़ी कब्जा कर लेने से। तो तीन चीजें हो गई ना, अज्ञान मल के लेप से और कसाय मल के लेप से, तो ये तीन उदाहरण से के तीन गाथाओं में उन्होंने बता दिया। थोड़ा आत्मख्याति पढ़ते हैं उनकी टीका संस्कृत की, बहुत सरल है गाथाएं। तो जिस प्रकार प्रभाव रूप मेल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र स्वभावभूत श्वेत स्वभाव के वस्त्र स्वभावभूत श्वेत स्वभाव त्रोभूत हो जाता है, वस्त्र का स्वभावभूत श्वेत स्वभाव त्रोभूत हो जाता है, उसी प्रकार मोक्ष का कारण रूप ज्ञान का सम्यक्त स्वभाव प्रभाव रूप मिथ्यात्व नामक कर्म रूपी मेल के द्वारा व्याप्त होने से त्रोभूत हो जाता है। जिस प्रकार प्रभाव रूप मेल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभाव भूत श्वेत स्वभाव त्रोभूत हो जाता है, उसी प्रकार मोक्ष का कारण रूप ज्ञान का ज्ञान स्वभाव स्वभाव प्रभाव रूप अज्ञान से, ज्ञान का ज्ञान स्वभाव ये वो पर्याय वाला बात है, सम्यक ज्ञान से नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार पाप रूप मैल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभाव भूत श्वेत स्वभाव त्रोभूत हो जाता है, उसी प्रकार मोक्ष का कारण रूप ज्ञान का चारित्र स्वभाव प्रभाव रूप कसाय नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से त्रोभूत हो जाता है। इसलिए मोक्ष के कारण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का त्रोधान करने वाला होने से कर्म का निषेध किया गया है। कर्म का निषेध किया गया है माने कर्म माने यहां क्या चल रहा है, कर्म शुभ भाव और शुभ क्रिया रूप कार्य, वो कर्म सबसे वो गहना बना दिख नहीं ले लेना और अशुभ भी मत ले लेना, क्योंकि प्रकरण उसका ही चल रहा है, निषेध किया गया है लिखा ना, कर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रणमन भी है, किसका ज्ञान गुण का चारित्र गुण का, लेकिन उसका निषेध जिसका निषेध किया गया है वो कौन सा है। इस प्रकार गाथा और टीका में सफेद वस्त्र के उदाहरण के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल से ढक जाती है, उसी प्रकार आत्मा का परम पवित्र निर्मल स्वभाव शुभाशुभ भावों से ढक जाता है। यही कारण है कि मुक्ति के मार्ग में शुभाशुभ भावों का निषेध किया गया है। इतना क्यों घोंट रहे? तो आचार्य घोंट रहे, बार 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 कहते हैं कि हो गई, एक दिन कह दी थी ना, अब हर गाथा में कह दो, एक दिन एक गाथा पढ़ेंगे और 20 दिन में 20 गाथा पढ़ेंगे और 20 गाथाओं में बात 20 दफे लिखी होगी तो 20 दफे आएगी क्यों? इतनी ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, थोड़ी कम लिखना चाहिए थी क्यों? मैं पूछता हूं कि इसका नियम कैसे बनाए कि कितनी दफे लिखना चाहिए और कितनी दफे कहना चाहिए। सरल सरलता से मैं आपको निर्णय करने का थोड़ा रास्ता बताता हूं। हम अपने बेटे से एक गिलास पानी मंगाएं, फिर 5 मिनट गए एक गिलास पानी लाना, फिर 2 मिनट बाद गए एक गिलास पानी लाना, तो हमें कितनी दफे कहना चाहिए मनोज बाबू बोला? कितनी दफे कहना चाहिए? कब कितनी दफे कहना हमारे लिए अपराध नहीं है और कब बार हमारे बाद में वो कहना अपराध हो जाएगा? एक ही नियम है ना कि जब तक हमारे पास वो एक गिलास पानी हाथ में ना आ जाए तब तक कहना चाहिए। यदि हम ऐसा देखें और बिना ही कहे वो उठा के लाके हम घड़े की तरफ देखें क्यों और काम हो जाए तो कहने ही नहीं चाहिए क्यों? हम ऐसा देखें और आपका काम हो जाए कि शायद पंखा नहीं चल रहा, दादा को पंखा चलाना है, तो हम काय को कहेंगे क्यों? पंखे की तरफ देखने से चार आदमी दौड़ के आ जाए और पंखा चला दें तो हमको कौन सा शौक है कि प्रयोजन के बीच में कहेंगे भैया ये पंखा बंद है जरा पंखा चला दें? नहीं, ऐसा होता नहीं है। ऐसे पुण्यशाली लोग जगत में है नहीं अपने गुरुदेव श्री जैसे क्या? उनके मुंह से निकलना तो बहुत दूर की बात है क्या? उनका भाव है, समझ में आई ना, जरा सा भी है? उन्हें जरा सा मुंह से कह दिया तो 2500 लोग उस सेवा के लिए दौड़ पड़ते थे, है क्या? नहीं है, भाव प्रकट हो जाना चाहिए। अब आप कह, अब कह रहे इतनी दफे कह रहे और तुम्हारा काम हो गया हो, वो एक गिलास पानी आ गया हो तो नहीं कहेंगे? माने तुम्हारी पुण्य में से उपादेय बुद्धि, माने वो मुक्ति का मार्ग है, ऐसी बुद्धि नष्ट हो गई हो तो उस दिन आप कह सकते हो कि साहब अब मत कहना, कल से आपकी आज्ञा सिरोधारी हो जाएगी क्या? ठीक है कि नहीं? उसके बिना आप वहीं पर कहते रहो तो कैदर हो जाएगा, नहीं हो सकता है। देखो आगे भी गाथाएं बहुत सरल हैं और इन गाथाओं पर ये अधिकारी खत्म हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको जयचंद जी छाबड़ा का पढ़ के सुना देना चाहता हूं, बाकी अपन जल्दी आगे बढ़ेंगे। देखो पेज नंबर निकालो 362। नीचे से 5वीं पंक्ति, उक्त कथन को अत्यंत स्पष्ट सरल शब्दों में पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। सम्यक दर्शन, ये जो बहुत सरल है, ये अभय कुमार जी अपनी तरफ से भी लिखा जा सकता था, लेकिन इसलिए कि भाई और एक के संगे दो हो जाए, दो वोट हो जाए लोगों की प्रमाणिकता के लिए, क्या यही बात? और हम जयचंद छाबड़ा का ही पढ़ के और अपनी भाषा में अपनी तरफ से लिख देते तो क्या दिक्कत थी? लेकिन वो जमाना पुराना था, आज का जमाना नहीं है। आज का जमाना विद पेज नंबर सहित लिखने की पद्धति का है जमाना है, ख्याल में है ना, उसमें से प्रमाणिकता मानी जाती है। सम्यक दर्शन क्या है?
सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष मार्ग हैं। ज्ञान का सम्यक रूप प्रणमन मिथ्यात्व कर्म को से त्रोभूत होता है। ज्ञान का ज्ञान रूप प्रणमन अज्ञान कर्म से त्रोहित होता है। ज्ञान का चारित्र रूप प्रणमन कषाय कर्म से त्रोभूत होता है। माने चारित्र कषाय, चारित्र के विरुद्ध कषाय है, कषाय के विरुद्ध चारित्र है। इस प्रकार मोक्ष के कारण भावों को कर्म त्रोभूत करता है, इसलिए उसका निषेध किया गया है। फिर तो गुरुदेव का तो ये लंबा चौड़ा है, आप घर पे शांति से पढ़ लेना। अब अगली गाथाएं। अब यह कहते हैं कि ये शुभाशुभ भाव रूप कर्म न केवल बंध के कारण है, अपितु बंध स्वरूप ही है। इसी भाव को व्यक्त करने वाली आगामी गाथाएं इस प्रकार हैं। देखो ये पहले से ही कहते आए हैं, मोक्ष रूप है, मोक्ष हेतु है, बंध हेतु है, बंध रूप है। आ रहा है ना, पहले भी गाथाओं का पाठ में आप ध्यान से सुन रहे हो कि जो मोक्ष का हेतु है वो मोक्ष का रूप होना चाहिए, मोक्ष रूप होना चाहिए। माने यदि ध्यान मोक्ष का हेतु है तो ध्यान मोक्ष रूप होना चाहिए, माने मोक्ष में ध्यान होना चाहिए, ऐसे अर्थ हो गया ना। अब गाथा में अभी तो हेतु सिद्ध किया है, अब वो मोक्ष रूप है क्या, क्या क्या चीज, सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष रूप है, ये सिद्ध कर रहे हैं। जो सभ्यण दर्शी कम इन यही है, नीण मो संसार सवावन्नो न जान जी सभ्य दो सभ्यम। इसका तो अर्थ अपन ने भी पढ़ा था ना, चर्चा की थी, कल करेंगे इसमें विस्तार से चर्चा। पहले इसके आगे की गाथाएं बताना चाहता हूं मैं आपको, जो बिल्कुल उससे उल्टी हैं। आप कहें क्यों उसे छोड़ देते हो, फिर आगे की बताते हो, फिर पीछे ले जाते हो, जो उससे संबंधित है ना, वो जोड़ी जोड़ी है उसकी, वो तीन गाथाओं की जोड़ी इन तीन गाथाओं में है। सम्मतम परिबद्धम मिच्छन्तम जनवरे ही परी कहियम तस्सोदयेन जीवो मिथ्यादिष्टितृणादब्बो। और एक एक गाथा याद करने में क्या दम है, अरे इतना ये भाव ख्याल में आना है। अब बस अपन सम्यक शब्द है, फिर ज्ञान शब्द है, फिर चाहे तो शब्द है, जोड़ते चले जाओ, बनती जाएंगे नहीं। जो मैंने कल परसों आपको बताई थी, इस तरह हम बनाते चले जाते हैं, वो कोई कठिन बात नहीं है। थोड़े विवेक से हमें इसमें क्या स्टाइल अपनाई गई है उसकी बात है। और अमृतचंद्राचार्य इतने बड़े विद्वान थे कि उनके लिए कोई शब्दों की कमी नहीं थी, लेकिन वो शब्द बदलते नहीं हैं। अभी हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं ना प्रशिक्षण शिविर में कि देखो परिभाषाओं के शब्द बदलना नहीं, वो जल की जगह जल ही लिखना, पानी नहीं लिख सकते, है ना, समझ में आपके ना। अभी देखिए तीन चीजें हैं ना, कौन कौन सी हैं कि पानी, क्या वो बताई थी ना कल, किसी ने बताया, आपने बताई नहीं, तीन चीजें बताई थी ना कि ग्रस्त के लिए क्या करना चाहिए, कि ग्रस्त की पहचान के चिन्ह क्या हैं, प्रकाश ने बताई होंगी, क्या बताई थी बोलो, हैं? हाँ, नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग और अनशना पानी का त्याग, अनशना पानी पीने का त्याग है क्या, घबराना, मैं सिर्फ ध्यान दिला रहा हूं
मैं वहां सुनता रहता हूं सभी की, मेरे घर पर एक सेकंड में स्पीकर बंद नहीं रहता, जिस हॉल में होता है सब सुनता हूं, लेकिन जब कोई आ जाता है और उससे बात करनी पड़ती है, फोन आ जाता है उससे बात करनी पड़ती है तो छूट जाता है। तो मैं बस ध्यान दिलाने के लिए कह रहा हूं, प्रकाश जी तो बहुत ही बढ़िया समझा रहे थे, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कह, मैं ये कह रहा हूं कि आप ध्यान से देखना उस बालबोध पाठमाला में, अनशने जल के उपयोग का त्याग है। एक गिलास पानी तो पी लें छान के, और दो बाल्टी पानी अनशने से ठार से नहाएं। क्या फर्क है इसमें कि तुमने अपने पेट की सुरक्षा की, पानी के जीवों की सुरक्षा नहीं की। तो ये स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट हो गया, ये धर्म का डिपार्टमेंट नहीं रहा। यदि डॉक्टर लोग कहते हैं ना अनछने पानी का उपयोग नहीं करना, बिस्लरी का पानी लेना, क्यों? तो बेबी कहते गर्म करके लेना, और हमारे धर्म वाले भी कहते हैं, दोनों में अंतर समय, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं और ये धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। तो हम कहते हमको पानी का उपयोग, पूरे पानी का उपयोग, जो हम जो भी पानी करते हैं वो सब सिर्फ एक गिलास अपने पेट के बचाने की बात नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से मेरी किताब में भी ये स्पष्ट लिखा है और प्रशिक्षण निर्देश का में भी लिखा होगा कि, और निर्देश में भी लिखा होगा कि अध्यापक विद्यार्थियों को इसकी तरफ विशेष ध्यान दिलाएं, कि सिर्फ अनछने पानी पीने के त्याग की बात नहीं है, उसके उपयोग के करें हम उसकी बात है। हाँ देखो, अनछना जल काम न लेंगे, वो है ना, बिना छना जल काम न लेंगे, काम मैंने वो बुद्धिपूर्वक डाला गया है, वो कोई ऐसा नहीं है कि शब्द नहीं मिला से दे डाल दिया है। पर अभी आपको इतनी बात ख्याल में नहीं आई और आपने शब्द बदल दिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यदि या तो आप इतनी बुद्धि बात में ख्याल में आवे, और या फिर आप उसी भाषा को दोहराओ, और ख्याल में भी आ जाए दिलीप भाई तो भी नहीं बदलना। क्यों नहीं बदलना? क्योंकि फिर बार बार विद्यार्थी, वो थोड़ी जानता है जल और पानी एक ही चीज है, उसमें तो आप पहले तो जल छुड़ाया था, अब पानी छुड़ा रहे, अब क्या क्या छोड़े नक्की कर दे ना, कल जल की बात थी आज पानी की कहने लगे। आपको जल बोलो, जल ही जल बोलो, बस जल ये एक ही शब्द, उसी शब्द को आपको बोलना पड़ेगा। क्यों? हर बच्चा नहीं जानता है, आप बता दीजिए दोनों को एक ऐसे, वो भाषा विज्ञान का काम है, तो भाषा की क्लास पढ़ाएगा ना। देखो उसमें एक बात बताता हूं ध्यान से आपको, कि उसमें लिखा सामान्य अर्थ विवेचन किसे कहते हैं, कि सामान्य अर्थ बता देना, वहां प्रत्येक शब्द का मीनिंग बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भाषा की क्लास नहीं है, इसे हमको विषय वस्तु का ज्ञान कराना है। ऐसा लिखा कि नहीं लिखा, क्या अर्थ है इसका? एक जो हिंदी का पीरियड होगा और वहां यही कविता पढ़ाई जाएगी, तो वहां उसका जो जो कठिन मीनिंग है वो सब लिखाएगा मास्टर, और उन्हें मीनिंग को याद कराना इसकी ड्यूटी है। क्या मीनिंग को याद कराना उसकी ड्यूटी है। और अभी ये जो धर्म के ज्ञान है, इसमें धर्म का ज्ञान कराना है, भाषा का ज्ञान कराना उद्देश्य नहीं है। यदि भाषा का ज्ञान कराने बैठ जाएगा वो धर्म का पंडित, तो वो भाषा में उलझ जाएगा, फिर धर्म की बात रह जाएगी। एक मुझे बहुत पुरानी बात है, छठवीं सातवीं क्लास की बात होगी, मैं तो खैर छठवीं सातवीं क्लास पढ़ाई नहीं हूं, मैं तो पहली क्लास से सीधा लक्ष्यदांत कौमदी में आ गया था। तुम लोग दसवीं पास करके आते हो ना, मैं पहली क्लास के बाद आया था। लेकिन उसमें एक नियम है, मैं आपको क्या बता रहा था, काय के लिए बता रहा था, भाषा का, कि भाषा का ज्ञान हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा विषय का ज्ञान है। कि जब एक विद्यार्थी ने इतिहास के पेपर में उत्तर लिखा तो एक एक पेज में 100-100 गलतियां थी, कौन स्पेलिंग मिस्टेक, लेकिन उसको नंबर पूरे मिल गए, और दूसरे के में एक गलती नहीं थी और उसको नंबर नहीं मिला। तो मैंने कहा ऐसा कैसे होगा? तो हमारे एक गुरु जी पढ़ाते थे दादा, नरेश कुमार मास्टर थे ना, जो मुरैना विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने आते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि इतिहास में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं लिखी जाती है, लेकिन इतिहास का ज्ञान सही है, समसम्मत देखे जाते हैं। अकबर की हमने बात पूछी तो अकबर कब पैदा हुआ, कब राज किया, कब उसने किया, इतिहास में तारीखें सही होती हैं और सब झूठ होता है, और उपन्यास में तारीखें झूठी होती हैं और सब सही होता है। ऐसा समझे, सत्य की खोज गलत है कि सही? गांव के नाम झूठे हैं, तारीखें झूठी हों, सब झूठा है, और जो वस्तु स्थिति है वो मुझे एकदम सरल है। और इतिहास में वस्तु स्थिति एकदम झूठी होती है और तारीखें सही होती हैं। तो कहते इसमें से तारीखें देखी जाती हैं, तारीखें इसने सही लिखी इसलिए नंबर पूरे मिले, और तुम्हारे पर भाषा तो बड़े ही सरल है लेकिन तारीखें लिखी ही नहीं। और एक दफे मैंने लिखा था इत्यादि, सारे नंबर काट लिए उसे नरेश कुमार मास्टर जी ने। क्यों? कि इतिहास में इत्यादि नहीं लिखा जाता। क्यों? हमने तुमसे पूछा अकबर का जीवन बताइए, तो तुम बता दो ना पूरा, पहले इत्यादि क्यों? दो पेज में ही लिखना है तो जो तुमने लिखा वो पूरा है। इत्यादि माने अभी बाकी और है, बाकी काय के लिए छूट रहे, इत्यादि नहीं होता। इत्यादि शब्द लिखो तो सब खत्म किए। अब तेज आप जानते ही नहीं होंगे, आपने नमन कितने इत्यादि लिखे होंगे, और जो तुम्हारे परीक्षक भी नहीं जानते होंगे इसलिए नंबर भी पूरे मिल गए होंगे। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देखी जाती है, समझे ना? तो वो मैंने उसमें लिखा इसमें स्पेल, क्यों? एक बेचारा आठवीं क्लास पास है, एक एमए पास बैठा है, दोनों प्रशिक्षण से बदमे। अब एमए क्लास की भाषा और आठवीं क्लास की भाषा एक सी कैसे हो सकती है? एक इंग्लिश मीडियम वाला है और एक हिंदी मीडियम वाला है, तो दोनों की भाषा एक सी कैसे होगी? तो भाषा थोड़ी। अब हमें तो पांच पाप हैं, पांच पाप के नाम याद चाहिए, चार कथाओं के नाम याद चाहिए, उनकी परिभाषाएं चाहिए। क्यों? अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये समझ में आना चाहिए कि अनुकरण वाचन इसकी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यदि हमारी समझ में ये आ जाएगा तो फिर सब पूरे नंबर। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अभी आप सब समझ लो कि तुम्हारे पाठ योजना में भी कुछ लोग कहते बड़े कलाकारी, लाल पेन, हरा पेन, नीला पेन, अब ऊपर एक लिखते हैं लाल पेन, इसके एक नंबर नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि उसमें स्वच्छता का, सुंदरता का एक नंबर नहीं है। और आप उसमें लिख दोगे अनुकरण माध्यम किसे कहते हैं, आधी लाइन में टूटा फूटा, और सही होगा तो उसके पूरे नंबर मिलेंगे। ये परीक्षक जांचने वाले भी समझ लें, लिखने वाले समझ, जांचने वाले भी समझ लें, क्योंकि इतना स्टैंडर्ड में फर्क है तो सबकी हम शुद्धि, भाषा की शुद्धि कैसे देख सकते हैं? हमें तो जो चीज हमने पढ़ाई है वो उसकी समझ में आई कि नहीं आई, और वो उसने जो लिखा है उसमें उसका सही भाव आया है कि नहीं आया है, हमें इतनी बात देखनी है। जो उसने लिखा ना, भाषा ज्ञान हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य तो सब्जेक्ट ज्ञान है। अब इसका इतना अर्थ है, आपके अध्यापक ने बताया ही होगा, आपकी समझ में आई होगा, मैं तो एक उदाहरण के तौर पे ये बात आपको बताई, क्या उसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए, इसके पीछे क्या रहस्य है, हर बात में, छोटी छोटी बात में भी वो रहस्य होता है।